डैनियल की पुस्तक संख्या 107 भविष्यवाणी का वृत्तांत यरोबाम से योशिया तक और पुराने मार्गों की पुनर्स्थापना।
एक तो फारपोर में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रोटेस्टेंटों ने मिलराइट आंदोलन से अलग होकर भविष्यवाणी के अनुसार बाबुल की पुत्री के रूप में अपना स्थान ग्रहण किया, जैसा कि तब यारोबाम द्वारा एक नकली उपासना प्रणाली स्थापित करने से प्रतीकित है, जब उसकी 10 उत्तरी जातियां यहूदा के दक्षिणी राज्य से अलग हो गईं। यारोबाम के 2 स्वर्ण बछड़े, एक बेत एल नगर में अर्थ ईश्वर का घर कलीसिया और दूसरा दान में अर्थ न्याय राज्य कलीसिया और राज्य की उस मिथ्या प्रणाली का प्रतीक थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका का द्योतक है। कलीसिया और राज्य की यारोबाम की नकली प्रणाली के सभी तत्व उसी संरचना पर आधारित थे जो हारून के विद्रोह में प्रस्तुत की गई थी। अतः यारोबाम की नकली उपासना प्रणाली हारून की नकली उपासना प्रणाली का प्रतिरूप थी। यारोबाम की नकली व्यवस्था उस उपासना व्यवस्था का प्रतीक थी जिसका प्रोटेस्टेंटवाद ने समर्थन किया, जब वो पहले स्वर्गदूत के आंदोलन से अलग हो गया और पोप तंत्र के रोमी पशु की पुत्री अर्थात उसका प्रतिरूप बन गया। यारोबाम की इस नकली व्यवस्था की स्थापना के समय ही यहूदा का एक नबी उसकी वेदी और उसकी झूठी उपासना व्यवस्था का सामना करने आया। 1844 में जब धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद ने रोम की पुत्री के रूप में दर्शाई जाने वाली उपासना व्यवस्था स्थापित करने का कार्य आरंभ ही किया था, तब मिलराइटों ने विश्वास से स्वर्गीय पवित्र स्थान के परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और सप्त को पहचाना, और इस प्रकार वे रोम की पुत्रियों के लिए एक भविष्यद्वाणी पूर्ण फटकार सिद्ध हुए, जिन्होंने रोम के अधिकार की छाप रविवार की उपासना का पालन जारी रखने को चुना। यहूदा का वो नबी जिसने यारोबाम का सामना किया, उसने वही उसी समय एक भविष्यवाणी घोषित की
और उसने यहोवा के जीवन के द्वारा वेदी के विरुद्ध पुकार कर कहा, हे वेदी, हे वेदी, यहोवा यों कहता है, देखो दाऊद के घराने में योशिया नाम का एक पुत्र जन्मेगा, और जो ऊंचे स्थानों के याजक तेरे ऊपर धूप जलाते हैं वो उन्हें तुझ पर ही बलि चढ़ाएगा और मनुष्यों की हड्डियां तुझ पर जलाई जाएंगी। और उसी दिन उसने एक चिन्ह दिया, ये कहते ही, ये वो चिन्ह है जो यहोवा ने कहा है, देखो वेदी फट जाएंगी और जो राख उस पर है वो उंडेली जाएंगी। 1 राजा 13:2-3।
भविष्यवाणी में वेदी शब्द का दोहराव शामिल था। भविष्यवाणी में किसी शब्द या वाक्यांश का दोहराव दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के प्रतीक का द्योतक होता है और इस प्रकार 1844 वर्ष की पहचान कराता है, जब दूसरा स्वर्गदूत आया और प्रोटेस्टेंटवाद गिरकर बाबुल की पुत्री बन गया। उसी समय भविष्यद् वक्ता ने एक चिन्ह भी दिया, जैसे 1844 में मिलराइटों ने सप्त के चिन्ह को पहचान लिया था। आगे की आयतों में जब यारोबाम ने भविष्यद् वक्ता को धमकाया तो उसका हाथ लकवाग्रस्त हो गया, जो बाबुल की उस छाप की ओर संकेत करता है जो माथे या हाथ पर जबरन लगाई जाती है और जिसे ग्रहण करने पर मनुष्य आत्मिक रूप से सदा के लिए अपंग हो जाता है। इस अध्ययन के उद्देश्यों के लिए हम उस भविष्यवाणी पर विचार कर रहे हैं जो भविष्यवक्ता ने ये बताते हुए रखी थी कि दाऊद के घराने में एक बालक जन्मेगा जिसका नाम योशिया होगा और तुझ पर वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को बलिदान करेगा जो तुझ पर धूप जलाते हैं और मनुष्यों की हड्डियां तुझ पर जलाई जाएंगी। योशिया का अर्थ परमेश्वर की नींव है और वो एडवेंटिज्म की 2 नींवों का प्रतिनिधित्व करता है जो उसी इतिहास में स्थापित हुई जिसका प्रतिरूप यारोबाम द्वारा अपनी झूठी उपासना प्रणाली का आरंभ है। यारोबाम द्वारा स्थापित उसी झूठी उपासना प्रणाली के विरुद्ध योशिया उन याजकों को दंडित करेगा जिन्होंने उस कपटपूर्ण उपासना में अगुवाई की थी। भविष्यद्वक्ता ने प्रभु की उस आज्ञा की अवहेलना की कि वो यारोबाम के राज्याभिषेक के लिए जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस न लौटे और बेतल में न खाए न पिए। जब उसने बेतल के झूठे भविष्यद्वक्ता का भोजन खाया तब उसे उन पर आने वाली उस मृत्यु के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया जो 1844 के बाद धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के मतों और झूठी भविष्यवाणी संबंधी पद्धतियों की ओर लौटना और उन्हें अपनाना चुनेंगे, जैसा कि 1863 के विद्रोह द्वारा दर्शाया गया है। 1863 में जिन्होंने विद्रोह किया उनकी मृत्यु बूशेल बेतेल के झूठे भविष्यद्वक्ता की मृत्युशया के समान ही होगी। धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की मृत्युशया 11 अगस्त 1844 से 1844 तक का इतिहास था, जब वे जो पहले परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे एक ओर कर दिए गए और रोम की पुत्रियां बन गए। लाओदिकियाई एडवेंटिज्म शैया भी 11 सितंबर 2001 को जब शक्तिशाली स्वर्गदूत उतरा, जैसा कि 1840 में हुआ था, और महान भूकंप की उस घड़ी के बीच होगी जो शीघ्र आने वाले रविवार का कानून का प्रतिनिधित्व करती है। 11 सितंबर 2001 को 1,44,000 पर बोहर लगाना शुरू हुआ और स्वर्गदूत यरूशलेम के बीच से होकर चलने लगा, उन लोगों के माथे पर चिन्ह लगाते हुए जो देश, संयुक्त राज्य और कलीसिया लाओदिकियाई एडवेंटवाद में की गई घृणित बातों के कारण आहें भरते और रोते हैं। 11 सितंबर 2001 को यहेजकेल की 4 घृणित बातों द्वारा दर्शाए गए पितरों के पाप उस मुहर लगाने की प्रक्रिया में जो तब शुरू हुई वर्तमान परीक्षणकारी सत्य बन गए। 103 की परीक्षा मिलरवादी आंदोलन की उन नियमों से संबंधित थी जिनका प्रतिनिधित्व लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 के 7 बार से होता था, जिन्हें 633 में अस्वीकार कर दिया गया था। यह परीक्षा यर्मया के पुराने मार्गों पर लौटने की इच्छा या अनिच्छा से संबंधित थी, ताकि अंतिम वर्षा का विश्राम पाया जा सके। 2187 की परीक्षा वो संदेश था जो एल्डर्स जोन्स और वैगनर द्वारा लाओदिकिया की कलीसिया को दिया गया, जो विश्वास द्वारा धर्म सिद्धि का संदेश भी था। 185 विशेष में लाओदिकिया के लिए संदेश पहली बार मिलराइटो के आंदोलन में पहुंचा और वो 7 समय के अधिक प्रकाश के साथ आया, परंतु लाओदिकिया के संदेश में बताए गए उपचारों द्वारा प्रदर्शित अनुभव तथा भविष्य सूचक इतिहास का संदेश दोनों 163 में अस्वीकार कर दिए गए। वो अनुभव प्रतीति के दर्शन मारहे के द्वारा और भविष्य सूचक इतिहास के दर्शन चाजोन द्वारा दर्शाया गया था, इन दोनों को अस्वीकार कर दिया गया। इन दोनों दर्शनों की पूर्ति 22 अक्टूबर 1484 को हो चुकी थी और 19 वर्ष बाद दोनों को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यीशु सदैव अंत को आरंभ से जोड़ते हैं। 11 सितंबर 2001 को 1863 सात और 1833 के विद्रोहों का परीक्षण फिर से परखने वाली सच्चाई ठहरा, क्योंकि वे दोनों यर्मया के प्राचीन मार्गों से जुड़े थे। उसी तिथि को पश्चात वर्षा का संदेश आया और 1819 की परख भी आ पहुंची, क्योंकि 1919 में ऐसे मसीह का झूठा सुसमाचार स्थापित किया गया जो किसी भी भविष्य सूचक प्रासंगिकता से रहित है, और उसे शांति और सुरक्षा के छद्म संदेश के रूप में पेश किया गया। जब 11 सितंबर 2001 को प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 का बलवान स्वर्गदूत उतरा तो आयतें 1 से 3 पूरी हुई, और ये आयतें पहली आवाज के संदेश का प्रतिनिधित्व करती है।
अब वो कथन सामने आता है कि मैंने ये घोषणा की है कि न्यूयॉर्क ज्वार भाटे की एक प्रबल हेर से बहा दिया जाएगा। ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने इतना कहा है कि जब मैं वहां एक के ऊपर एक उठी हुई विशाल इमारतों को देखती थी, तब मैंने कहा, जब प्रभु भयानक रीति से पृथ्वी को कंपाने के लिए उठेगा, तब कितने भयंकर दृश्य घटित होंगे। तब प्रकाशित वाक्य 18:1 के वचन पूरे होंगे। प्रकाशित वाक्य का 18वां अध्याय संपूर्ण रूप से इस बात की चेतावनी है कि पृथ्वी पर क्या आने वाला है, परंतु न्यूयॉर्क पर विशेष रूप से क्या आने वाला है इसके विषय में मुझे कोई विशिष्ट प्रकाश नहीं है। केवल इतना मैं जानती हूँ कि एक दिन वहाँ की वे विशाल इमारतें परमेश्वर की सामर्थ्य के घूमने और उलट पलट कर देने से ढा दी जाएंगी। मुझे जो प्रकाश दिया गया है उसके अनुसार मैं जानती हूँ कि संसार में विनाश उपस्थित है। प्रभु का एक वचन, उसकी महान सामर्थ्य का एक स्पर्श और ये विशाल संरचनाएं गिर पड़ेंगी। ऐसे दृश्य घटित होंगे जिनकी भयावहता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रिव्यू एंड हेरल्ड, July 5, 1906।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 के स्वर्गदूत के आगमन के साथ अंतिम वर्षा की फुहारें पड़नी शुरू हुई और हबक्कूक अध्याय 2 में दर्शित भविष्यद्वाणीगत विवाद आरंभ हुआ। ये बहस बाइबल की भविष्यवाणी को समझने की दो पद्धतियों और अंतिम वर्षा के एक झूठे तथा एक सच्चे संदेश के विषय में थी। ये विवाद तब समाप्त होता है जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की दूसरी आवाज आती है और आधुनिक बाबेल पर परमेश्वर के कार्यकारी न्याय की शुरुआत को पहचानती है और परमेश्वर की अन्य भेड़ों को बाबेल से बाहर बुलाती है। दूसरी आवाज का आगमन 144,000 पर मोहर लगाए जाने के इतिहास के अंत को चिह्नित करता है, जिसका प्रतिनिधित्व चौथी घृणितता करती है, और ये बदले में लाओदिकियाई एडवेजडिम्स की चौथी और अंतिम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है, जो शीघ्र आने वाले रविवार के कानून के समय सूर्य के आगे झुक जाएगी। धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद की मरणशैया, स्वर्गदूत के अवतरण और 1844 के बंद द्वार के बीच लाओदिकियाई एडवेंटवाद की स्वर्गदूत के अवतरण और शीघ्र आने वाले रविवार कानून के बंद द्वार के बीच की मरणशैया का प्रतीक थी। यहूदा से आया भविष्यद्वक्ता बेतएल की झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ उसी कब्र में दफनाया गया, और जब राजा योशिया ने अपने सुधार की शुरुआत की तो वो उसी कब्र के सामने खड़ा हुआ। राजा योशिया का सुधार, जिसका नाम परमेश्वर की नींवों का प्रतिनिधित्व करता है, तब आरंभ हुआ जब 11 सितंबर 2001 को परमेश्वर ने अपनी अंतिम दिनों की प्रजा को नींवों की ओर वापस ले जाना शुरू किया। उसका सुधार तब शुरू हुआ था जब मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य हाथ में लिया गया।
और ऐसा हुआ कि राजा योशिया के 18वें वर्ष में राजा ने लेखक शाफान को, जो अजल्याह का पुत्र मेशुल्लाम का पुत्र था, यहोवा के भवन में ये कहकर भेजा कि महायाजक हिल्किया के पास ऊपर जाओ, ताकि वो उस चांदी की गिनती करे जो यहोवा के भवन में लाई गई है, जिसे द्वारपालों ने लोगों से इकट्ठा किया है, और उसे काम करने वालों के हाथ में सौंप दें जो यहोवा के भवन की देखरेख करते हैं, और वे उसे यहोवा के भवन में काम करने वालों को दें, ताकि घर की टूट फूट की मरम्मत करें, बढ़ियों, निर्माताओं और राजमिस्त्रियों को, और घर की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थर खरीदे। तो भी उनके हाथ में जो धन सौंपा गया था उसका उनसे कोई हिसाब नहीं लिया गया, क्योंकि वे निष्ठापूर्वक काम करते थे। और महायाजक हिल्किया ने लेखक शाफान से कहा, मैंने यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक पाई है। और हिल्किया ने वो पुस्तक शाफान को दी और उसने उसे पढ़ा। तब लेखक शाफान राजा के पास आया और राजा को समाचार दिया और कहा, तेरे दासों ने वो धन जो घर में पाया गया था इकट्ठा कर लिया है और उसे उनके हाथ में सौंप दिया है, जो काम करते हैं और जो यहोवा के भवन की देखरेख करते हैं। और लेखक शाफान ने राजा से ये भी कहा, हिल्किया याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। और शाफान ने वो पुस्तक राजा के सामने पढ़ी। और ऐसा हुआ कि जब राजा ने व्यवस्था की पुस्तक के वचन सुने, तब उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, और राजा ने हिल्किया याजक और शाफान के पुत्र अहीकाम और मीकाया के पुत्र अखबोर और लेखक शाफान और राजा के सेवक आसाया को आज्ञा दी, ये कहते हुए, तुम जाओ, मेरे लिए, प्रजा के लिए और सारे यहूदा के लिए इस मिली हुई पुस्तक के वचनों के विषय में यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा का जो क्रोध हम पर भड़क उठा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पितरों ने इस पुस्तक के वचनों की बात नहीं मानी कि हमारे विषय में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करें। 2 राजा SN 23-13।
ये भविष्यवाणी कि योशिया नाम का एक बालक जन्म लेगा 11 सितंबर 2001 की ओर संकेत करती है, जब शक्तिशाली स्वर्गदूत अवतरित हुआ और अपनी अंतिम दिनों की प्रजा को पुराने मार्गों के नामा पर वापस ले गया। उस अवतरण का पूर्व रूप 11 अगस्त 1840 को उसी स्वर्गदूत के अवतरण में दिखाई दिया था। दोनों अवतरणों ने इस्लाम की एक भविष्यवाणी की पूर्ति को चिह्नित किया। वह ऐतिहासिक व्यक्ति जिसका नाम प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद 15 में मिलती इस्लाम की समय संबंधी भविष्यवाणी की पूर्ति की पहले से पहचान करने और उसकी पूर्ति की अग्रिम भविष्यवाणी प्रकाशित करने से जुड़ा था, योशिया था। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 10 और 18 में वर्णित स्वर्गदूत के दोनों अवतरणों में योशिया नाम चिह्नित है। योशिया लिच ने इस्लाम का वो संदेश प्रस्तुत किया जो 11 अगस्त 1840 को पूरा हुआ और 11 सितंबर 2001 को यारोबाम के इतिहास में अवज्ञाकारी भविष्यवक्ता द्वारा प्रस्तुत योशिया नामक एक बालक के जन्म की भविष्यवाणी लाउदी कियाई एडवेंटवाद में पूरी हुई, क्योंकि स्वर्गदूत अपने अंतिम दिनों के लोगों को उस आधारभूत इतिहास की ओर वापस ले गया जहां अवज्ञाकारी भविष्यवक्ता और यारोबाम के बीच का टकराव अपनी पूर्ति तक पहुंचा था। बाइबलीय साक्ष्य ने आने वाले एक योशिया की भविष्यवाणी की पहचान की और जब 1884 में अवज्ञाकारी भविष्यवक्ता द्वारा प्रतिरूपित इतिहास दोहराया गया तो उस नाम के संबंध में उसकी भविष्यवाणी को एक बार फिर भविष्यवाणी के कथानक में स्थान दे दिया गया। 11 सितंबर 2001 को यहूदा के गोत्र के सिंह ने अंतिम दिनों की अपनी प्रजा को यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर वापस ले गया जो उन 46 वर्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जिनमें वाचा के दूत ने वो मंदिर खड़ा किया था जिसमें वो 22 अक्टूबर 1844 को अचानक आने वाला था। जब योशिया ने मंदिर की मरम्मत का कार्य आरंभ किया तो उसने मूसा का शाप खोज निकाला। 144,000 के कार्य को यशाया ने पुनर्स्थापन का कार्य बताया है।
और वे पुराने उजाड़ स्थानों का पुनर्निर्माण करेंगे, वे पहले के उजाड़ों को पुनर्स्थापित करेंगे और वे उन उजड़े हुए नगरों की मरम्मत करेंगे जो अनेक पीढ़ियों से उजाड़ पड़े हैं। यशाया 1:21।
मंदिर की मरम्मत और पुनर्स्थापना में योशिया का जो कार्य था उसे यशाया ये बताते हैं कि वो परमेश्वर की अंतिमकालीन प्रजा द्वारा पूरा किया जाता है, क्योंकि सभी भविष्यद्वक्ता जिन दिनों में वे रहते थे उनकी अपेक्षा अंतिम दिनों के विषय में अधिक बोलते हैं। उस कार्य का प्रतिरूप एज्रा के समय बाबुल से निकलने वालों को भी दिखाया गया था।
क्योंकि हम दास थे तो भी हमारी दासता में हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, परंतु उसने फारस के राजाओं की दृष्टि में हम पर दया की कि हमें पुनर्जीवन दे, हमारे परमेश्वर के भवन को स्थापित करे, उसके उजाड़ स्थानों की मरम्मत करे और यहूदा और यरूशलम में हमें एक प्राचीर दे। एज्रा 9:9।
एज्रा द्वारा किया गया कार्य तब पूरा हुआ जब वे बाबुल से निकल आए थे और ये उस मंदिर की पुनर्स्थापना के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है जो योशिया कर रहा था, वो कार्य जिसे यशाया ने परमेश्वर के अंतिम दिनों के लोगों से संबंधित पहचाना था और ये 11 सितंबर 2001 को शुरू हुआ। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना भी उस कार्य की पहचान करता है।
और वो आवाज जो मैंने स्वर्ग से सुनी थी फिर मुझसे बोली और कहा, जा और उस छोटी पुस्तक को ले ले जो स्वर्ग दूत के हाथ में खुली है जो समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है। तब मैं स्वर्ग दूत के पास गया और उससे कहा, मुझे वो छोटी पुस्तक दे, और उसने मुझसे कहा, इसे ले और इसे खा ले और ये तेरे पेट को कड़वा कर देगा परंतु तेरे मुंह में मधु के समान मीठा होगा। तब मैंने स्वर्ग दूत के हाथ से वो छोटी पुस्तक ले ली और उसे खा लिया और वो मेरे मुंह में मधु के समान मीठी थी, पर जैसे ही मैंने उसे खा लिया मेरा पेट कड़वा हो गया। और उसने मुझसे कहा, तुझे फिर से बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के सामने भविष्यद्वाणी करनी अवश्य है। और मुझे छड़ी के समान एक सरकंडा दिया गया और स्वर्ग दूत खड़ा था ये कहते हुए, उठ और परमेश्वर के मंदिर का और वेदी का और जो उसमें उपासना करते हैं उनका माप ले, परंतु जो आंगन मंदिर के बाहर है उसे छोड़ दे और उसका माप न ले, क्योंकि वो अन्य जातियों को दे दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदेंगे। और मैं अपने दो गवाहों को सामर्थ दूंगा और वे टाट के वस्त्र पहने हुए 1260 दिनों तक भविष्यद्वाणी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 10:8। लेकिन कामुबे और वह थालू छोटी पुस्तक को ले दे, परंतु जो आंगन मंदिर के बाहर है उसे छोड़ दे और उसका माप न ले।
इस खंड में यूहन्ना उन मिललाइटों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने उस संदेश को खा लिया था जो स्वर्गदूत के हाथ में था जब वो 11 अगस्त 1840 को उतरा था, परंतु जो 22 अक्टूबर 1844 की महान निराशा से भी गुजरे थे। 1844 की उस महान निराशा पर खड़े होकर यूहन्ना से कहा गया कि वो परमेश्वर के अंतिम दिनों के लोगों के प्रतीक के रूप में 1840 से 1846 तक दर्शाए गए अनुभव को फिर से दोहराए, जिससे 11 सितंबर 2001 और शीघ्र आने वाले रविवार के कानून की ओर संकेत हो। उससे कहा गया, तुझे अनेक लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के सामने फिर से भविष्यवाणी करनी होगी, जो ये दर्शाता है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में जब स्वर्गदूत उतरता है तब सारी दुनिया आलोकित हो जाती है, और प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 का इतिहास फिर से दोहराया जाता है रेखा पर रेखा। परमेश्वर के अंत समय के लोगों के फिर से भविष्यवाणी करने पर जो इतिहास दोहराया जाएगा उसकी पहचान के संदर्भ में यूहन्ना से कहा गया, उठ और माप परमेश्वर का मंदिर। उसके मापने को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया क्योंकि उसे 1844 के वर्ष में रखा गया था, जहां 22 अक्टूबर की निराशा से उसका पेट कड़वा कर दिया गया था। उसे मंदिर को मापने को कहा गया, पर आंगन को छोड़ देने को, जिसके बारे में उसे बताया गया कि वो अन्य जातियों का समय दर्शाता है जब वे आंगन को 1260 वर्षों तक रौंद देंगे। ये 1260 वर्ष 1798 में समाप्त हुए। यूहन्ना को अपनी माप 1798 से शुरू करनी थी और उससे पहले के 1260 वर्षों को छोड़ देना था, जब आत्मिक मंदिर और आत्मिक यरूशलेम रौंदे गए थे। वो 1844 की निराशा के समय खड़ा था, इसलिए 1798 से 1844 से 1844 तक 46 वर्ष होते हैं। ये 46 वर्ष मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब यूहन्ना अर्थात परमेश्वर की अंतिम दिनों की प्रजा 1843 से 1853 की तरह फिर से भविष्यवाणी करने वाले थे, तब उनका कार्य तब आरंभ होना था जब इस्लाम की एक भविष्यवाणी की पूर्ति के समय एक स्वर्ग दूत उतरा। उनके फिर से भविष्यवाणी करने के कार्य के लिए मंदिर का मापन करना आवश्यक था, और वो कार्य पुराने पथों की जांच का प्रतिनिधित्व करता था। ये वही इतिहास था जिसे मंदिर द्वारा दर्शाया गया था, जो 1798 में अंत के समय आरंभ हुआ और 1850 की महान निराशा पर समाप्त हुआ। जब उन्होंने यिर्मयाह के पुराने पथों, जो यूहन्ना का 46 वर्षों का मंदिर है, की जांच का अपना कार्य आरंभ किया, तो मंदिर में चारों ओर बिखरे मलबे में मूसा का श्राप पाया गया और आने वाले योशिया की भविष्यवाणी पूरी हुई। योशिया का कार्य यशाया द्वारा भी फिर से पहचाना जाता है।
और तेरे वंश के लोग पुराने उजड़े हुए स्थानों का पुनर्निर्माण करेंगे, तू बहुत सी पीढ़ियों की नींवों को फिर से खड़ा करेगा, और तुझे कहा जाएगा दरार को भरने वाला, निवास के लिए मार्गों को पुनर्स्थापित करने वाला। यशाया 98:2।
परमेश्वर की अंतिमकालीन प्रजा को उन बसने योग्य मार्गों को पुनर्स्थापित करना था जो यिर्मयाह के प्राचीन मार्ग हैं। उन्हें पुराने उजाड़ स्थानों का पुनर्निर्माण करना था, जैसा कि राजा योशिया और एज्रा के दिनों के इतिहास में काम करने वालों ने किया था। उन्हें रेखा पर रेखा की पद्धति अपनानी थी, क्योंकि वे केवल एडवेंटवाद के आधारभूत इतिहास को, जिसका प्रतिनिधित्व 46 वर्षों के मंदिर से होता है, खड़ा नहीं करने वाले थे, बल्कि ऐसा करते हुए उन्हें अनेकों पीढ़ियों की नींवों को उठाना था। उन्हें ये पहचानना था कि हर सुधार आंदोलन एक आधारभूत कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, और रेखा पर रेखा 1794 से 1884 तक के अंतिम दिनों की नींवों को पहचान कराती है। उन्हें दरार की मरम्मत करनी थी, और ये दरार किसी पात्र या दीवार में प्रारंभिक टूटन को दर्शाती है, जो आगे की तबाही का मार्ग खोल देती है। जिस दरार की मरम्मत की जानी थी वो 1813 से 1863 का विद्रोह था। 11 सितंबर 2001 को जब योशिया आया, तो परमेश्वर की अंतिमकालीन प्रजा यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर लौट आई और मिलराइट इतिहास को मापने लगी। उन्होंने भंग को खोज निकाला। उन्होंने पुराने उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाते हुए मिलर के स्वप्न के रत्नों के सत्य की पहचान की। उन्होंने सात समय को, जैसा कि योशिया ने किया था, खोज निकाला और लेव्य व्यवस्था 26 के सत्य को बहाल किया, और इस प्रकार पूर्व के उजाड़ को उठाया। जब उन्होंने लेव्य व्यवस्था 26 के पहले और अंतिम उजाड़ को बहाल किया, तब उन्होंने पहचाना कि एक 71 धनगे में समाप्त हुआ और दूसरा 1844 में। इस प्रकार पूर्व के उजाड़ को उठाने का उनका कार्य वही छड़ी था जो यूहन्ना को दी गई थी, जिसने उसे मंदिर को मापने की अनुमति दी। यहूदा के गोत्र के सिंह ने अपने लोगों को पुराने मार्गों पर लौटा दिया ताकि वे अंतिम वर्षा का संदेश पा सकें, और अंतिम वर्षा का ये संदेश तीसरी विपत्ति में इस्लाम का संदेश है। जब उन्होंने अंततः हबक्कूक की दो पवित्र पट्टिकाएं खोजीं, जिन्हें 1843 और 1850 के अग्रदूत चार्टों में दर्शाया गया था, तो उन्होंने देखा कि आधार में प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय की 3 विपत्तियां सम्मिलित थीं, और ये कि दूसरी विपत्ति उस आधारभूत इतिहास में समाप्त हो गई थी जहां मिलराइटों का मंदिर निर्मित किया गया था। तब उन्होंने ये पहचाना कि भविष्यवाणियों के तिहरे अनुप्रयोग के नियम की समझ पहले ही यहूदा के गोत्र के सिंह द्वारा स्थापित कर दी गई थी, ताकि जब वे यिर्मयाह के पुराने मार्गों पर लौटे तो वे विश्राम और ताजगी को पहचान सकें, जो तीसरी विपत्ति का अंतिम वर्षा संदेश है और जो पहली और दूसरी विपत्ति के दो गवाहों द्वारा पहचाना और स्थापित किया गया है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
शत्रु हमारे भाइयों और बहनों का मन उस कार्य से हटाने का प्रयास कर रहा है जिसमें एक प्रजा को तैयार करना है जो इन अंतिम दिनों में दृढ़ता से खड़ी रह सके। उसकी कपटपूर्ण युक्तियां मनों को इस समय के खतरों और कर्तव्यों से दूर ले जाने के लिए बनाई गई हैं। वे उस प्रकाश को कुछ नहीं समझते जिसे मसीह अपने लोगों के लिए यूहन्ना को देने स्वर्ग से आए थे। वे ये सिखाते हैं कि हमारे सामने ही जो घटनाएं हैं वे इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन्हें विशेष ध्यान दिया जाए। वे स्वर्गीय मूल की सच्चाई को अप्रभावी कर देते हैं और परमेश्वर के लोगों से उनका पूर्व अनुभव छीन लेते हैं और उसके स्थान पर उन्हें झूठा विद्यान दे देते हैं। यहोवा यों कहता है, मार्गों पर खड़े होकर देखो और प्राचीन पथों के विषय में पूछो कि वो उत्तम मार्ग कहाँ है, और उसी में चलो। यिर्मयाह 6:6 होले। कोई भी हमारे विश्वास की उन नींवों को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न न करे, उन नींवों को जो हमारे कार्य के प्रारंभ में वचन के प्रार्थनापूर्ण अध्ययन और प्रकाशना के द्वारा डाली गई थी। इन्हीं नींवों पर हम पिछले 50 वर्षों से निर्माण करते आ रहे हैं। मनुष्य ये समझ सकते हैं कि उन्होंने एक नया मार्ग खोज लिया है, और वे उस नींव से भी अधिक दृढ़ नींव डाल सकते हैं जो डाली जा चुकी है। परंतु ये एक महान छल है। जो नींव डाली जा चुकी है उसके अतिरिक्त कोई मनुष्य दूसरी नींव नहीं डाल सकता। अतीत में बहुतों ने एक नए विश्वास की रचना करने और नए सिद्धांतों की स्थापना करने का प्रयत्न किया है, पर उनका निर्माण कितने समय तक स्थिर रह सका? वो शीघ्र ही गिर पड़ा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर नहीं डाली गई थी। क्या प्रारंभिक चेलों को मनुष्यों की बातों का सामना नहीं करना पड़ा? क्या उन्हें मिथ्या सिद्धांतों को नहीं सुनना पड़ा और फिर सब कुछ कर चुकने पर दृढ़ खड़े रहकर ये नहीं कहना पड़ा, उस नींव को छोड़ जो डाली जा चुकी है, अर्थात यीशु मसीह, कोई मनुष्य दूसरी नहीं डाल सकता? 1 कुरिन्थियंस 3:11। अतः हमें अपने विश्वास के आरंभिक निश्चय को अंत तक दृढ़ता से थामे रखना है। परमेश्वर और मसीह की ओर से इस प्रजा के पास सामर्थ्य के वचन भेजे गए हैं जो उन्हें बिंदु बिंदु करके संसार से निकालकर वर्तमान सत्य के निर्मल प्रकाश में ले आते हैं। जिनके होंठ पवित्र अग्नि से स्पर्श किए गए हैं, परमेश्वर के सेवकों ने उस संदेश की घोषणा की है। दैवी वाणी ने घोषित सत्य की प्रामाणिकता पर अपनी मुहर लगा दी है। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 8 297-97।